से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान को विवर्धमान महान दिन सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो प्रकरण लिया जा रहा है वो प्रकरण कोई आपके लिए स्पेशल नहीं लिया जा रहा है। हमने समय सार की पहली गाथा से आरंभ किया है और अंतिम गाथा की अंतिम पंक्ति तक उसे हम पूरा करना चाहते हैं और यही सब प्रचरण टीवी पर भी जाते हैं। रोजाना जो सुबह 6:30 से 7 बजे तक दी जागरण पे अपना प्रचरण आता है वो यही प्रचरण जाते हैं, यहाँ के भी प्रचरण जाएंगे। इसलिए ऐसा दिमाग में से निकाल दो कि ये कोई बहुत ज्यादा कठिन प्रवचन होते होंगे, सारी जनता सुनती है, देश में हम टीवी पर भी वो ही देते हैं। अब कोई पहली क्लास वाला विद्यार्थी एकदम आकर के एमए वाली क्लास में बैठ जाए, अब एक शब्द भी जैन दर्शन का सुना नहीं है, अध्यात्म का जाना नहीं है, तब उसके समझ में कैसे आ सकता है। हम चाहे जितना सरल करें तो कुछ ना कुछ उसकी डिफिकल्टी तो उसे होगी। लेकिन हमारी भी एक समस्या है कि हम सरलता के व्यामोह में कब तक इस मर्म की बातों को छिपा के रखेंगे और ये क्या हम अपने साथ ही ले जाएंगे। एक कवि ने तो यहां तक लिखा है क्या है वो संचन्न है ना नीच से तकता के जो विद्वान सा मत्सरा ग्रस्ता, विद्वान लोग तो एक दूसरे से बहुत जलते हैं। ये गुरुदेव के प्रताप से अपने मिशन में बहुत कम है लेकिन सारे जगत का ये स्वरूप है, तो कोई अभी अपने पर नहीं लेना, लेकिन जगत का स्वरूप है नीतिकार का। विद्वान सा मत्सरा ग्रस्ता, विद्वान तो मत्सर से ग्रस्त हैं। मत्सर समझते ना, दाहेपना, जलन पना। विद्वान सा मत्सरा ग्रस्ता, प्रभवा इसमय दूषिता। प्रभवा माने प्रभावशाली लोग, माने राजा लोग, बड़े बड़े लोग। उन्होंने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि जिससे मतलब हर युग में घटित हो जाए, है ना। उस जमाने में राजा ही लोग प्रभावशाली होते थे, अब आए तो सब जो जो भी जिस क्षेत्र में है। माने जो प्रवचन सुनने के लिए सहज भाव से नहीं आ सकते हैं, यदि उनसे ये कहो कि आप पधारो देवलाली, 5 दिन का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, तो वो कहते हैं कि हाँ जरूर आऊंगा, बताओ मुझे करना क्या है। यदि उनसे हम ये कहें कि आपको प्रवचन सुनना है तो कहते हाँ हाँ आएंगे तो प्रवचन तो सुनेंगे ही, लेकिन करना क्या है हमारी समझ में नहीं आता। गुरुदेव के भक्तों को कैसे समझ में आएगा। तो फिर हम टीका करके बताते हैं कि उद्घाटन करना है, कि समापन करना है, कि मुख्य अतिथि बनना है, कि अध्यक्षता करनी है, क्या करना है, समझे ना। अब अपन समझिए सोचते ठीक है साहब, इन्हें अध्यक्ष बना के बैठा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि साहब आपको अध्यक्षता करनी है ना। तो फिर वो आते हैं और ये कहते हैं भाई साहब अध्यक्ष तो उसे कहते हैं जो सबसे अंत में बोले, और अंत में कोई रहता नहीं है, इसलिए मैं तो पहले बोलूंगा। और अपना भाषण देकर फिर कहते हैं मुझे दूसरी जगह भी अध्यक्षता करनी है, इसलिए मैं जाता हूं, अभी माफी मांगता हूं और चले जाएंगे। यानी से प्रभुवा इसमय दूषिता, प्रभावशाली लोग घमंड से मरे जा रहे हैं और अब रही साधारण जनता, तो वो घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेन्दन चिंतया सततम, घी नोन तेल घृत लवण ईंधन आजकल ईंधन है गैस इनकी चिंता में दिन ना रात मरी जा रही है। हर जगह 2 घंटे की लाइन लगानी पड़ती है तो बेचारी साधारण जनता कैसे आ जाए। इसमें लिखा है घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेन्द्रन चिंतया सततम जात विनिष्ठा बुधाधिपानामपी बुद्धि। क्या बड़े बड़े बुद्धवानों की बुद्धिमानों की बुद्धि घृत लवण तेल तंदुल की चिंता में ही लगी है। साधारण जनता सुने कैसे। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो सुभाषित है, सुभाषित समझते हैं अच्छी अच्छी बातें, वो जीर्ण मंगे सुभाषितम मेरे अंग के साथ ही जीर्ण हो जाएंगी और जे चिता में जल के चली जाएंगी। क्या करूं किसे सुनाऊं, समझे ना। ये तो गुरुदेव का प्रताप है, जिन्होंने अपन को माल भी दिया और इतना बड़ा मार्केट भी दिया है? क्या बोलने ये भी बताया और श्रोता भी तैयार, दिए गए इस बात को सुनने वाले तैयार हैं, तो ये अपना महाभाग्य है। मैं बात तो ये कह रहा था कि किसी के लक्ष्य से मैंने ये गाथाएं चुन करके नहीं लाया हूं। बिल्कुल अभी अभी जयपुर में शिविर था ना, मोटानी जी आए थे तो उसमें बंधाधिकार चल रहा था, बस अंतिम गाथाएं थी और वो वहां खत्म हुई और 1-2 व्याख्यान मोक्ष अधिकार पर भी वहां होंगे और उसके बाद यहां ये प्रकरण बिल्कुल सीधा आया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे कि उसके लक्ष्य से ये स्पेशल गाथाएं ली गई हैं और ये आगे इसी क्रम में चलती रहेंगी। जहां भी जाएंगे कोई स्पेशल व्याख्यान, जैसे आपने आज सुबह करा लिया, पंच कल्याणक है तो पंच कल्याणक के व्याख्यान कोई कराना चाहेगा तो वो होंगे, नहीं तरह गाथाएं होंगी, समझे ना। कोई प्रसंग बस अलग हो तो अलग हो, अन्यथा यही क्रम हमने चला रखा है बहुत दिनों से। जब ये पूरा हो जाएगा तो प्रवचन शास्त्र शुरू हो जाएगा, जब तक जिंदा रहेंगे तो। इसलिए एक तो ये दिमाग में से निकाल दे कि किसी के काट छांट के लिए ये गाथाएं हमने प्रस्तुत की हैं, ये बिल्कुल नहीं है। और मूल आचार्यों की प्योर प्राकृत संस्कृत भाषा में जो बात आई है उसको हमें उसी रूप में रखना हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए किसी के लक्ष्य से उसे हम बदल भी नहीं सकते, है ना। वीतराग भाव से उसे प्रस्तुत करना हमारी ड्यूटी है और वो काम हम बिल्कुल विशुद्ध भाव से निभा रहे हैं, किसी को भी कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। अब आप निकालिए पेज नंबर, छोटी किताब है ना आपके पास, 122, पेज नंबर 122। एक सौ तेईस के ऊपर से लो, छोड़ दो, 22 को छोड़ देते हैं। बहुत मार्मिक बात है और मैं आपको 25 के नीचे तक अभी इस व्याख्यान में बताना चाहता हूं। 3 पेज करीब, 3 पेज पढ़ूंगा मैं बीच बीच में, थोड़ा कठिन विषय है लेकिन समझने जैसा है। देखो, जिस प्रकार बंधन में बना हुआ कोई पुरुष रस्सी के बंधन को, सांकल के बंधन को और काठ की बेड़ी के बंधन को, मूल गाथा में तो इतनी था बंधे छेतून, लेकिन जैसे नाचारि को जो किताब मिली उसमें लिखा था बंधे भेतून, फिर कोई तीसरी किताब मिली उसमें लिखा था बंधे मोतून। क्या कह रहे हैं, छेद तून है कि मोतून है कि भेद तून है, के नीचे है ना, 22 गाथा के नीचे जो मैंने छोड़ दिया है, तीन पद मिले। कौन? तो उन्होंने उदाहरण को भी तीन तरह से कह दिया कि बंधन तीन प्रकार का होता है। कैसा? एक तो कोई को रस्सी से बांधे, दूसरा है सांकलों से जकड़ दे, वो जैसा वो उनको मान तुंगाचार्य को किया था ना, वो तीसरा कौन सा है? वो लकड़ी के पहले पैरों में बेड़ियां डालते थे ना, तो लकड़ी के बड़े बड़े काट के बड़े हुए होते थे, उनमें छेद करके वो कस देते थे, समझे ना, तो उसमें कस दे, लकड़ी का बंधन। तो तीन बंधन हैं, तो उन्होंने कहा यदि रस्सी का बंधन हो तो मोह तूण माने छोड़कर उसे खोल दे, खोलकर, ऐसा अर्थ करना। यदि सांकल का बंधन हो तो छेद तूण, छेद देना, और लकड़ी का बंधन हो तो भेद तूण, भेद देना। देखो अभी परसों जिस प्रकार बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष रस्सी के बंधन को, सांकल के बंधन को, और काठ की बेड़ी के बंधन को, किसी भी प्रकार के बंधन को किसी को छेद कर, किसी को भेद कर, और किसी को छोड़कर माने खोलकर, अपने विज्ञान और पुरुषार्थ के बल से बंधन से मुक्त होता है। ये तो उदाहरण की बात हुई। अब यहां से अपनी असली बात शुरू होती है। उसी प्रकार जीव भी वीतरागी निर्विकल्प ससंवेदन ज्ञान रूपी शस्त्र से बंध को छेद कर, दो टुकड़े कर, भेद कर, विदीर्ण कर, छोड़कर, छुड़ाकर, खोलकर निःशुद्धात्मा की उपलब्धि रूप मोक्ष को प्राप्त करता है ये जीव। अब देखो जरा, वो सीधी सच्ची बातें कहना चाहते हैं। मैंने कई दफे दोहरा दिया, फिर एक दफे दोहराता हूं अभी अभी, कि वो ये कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति से तुम्हारे मुक्ति की प्राप्ति होगी, बाह्य के किसी क्रिया कांड से नहीं होगी, और अप्रयोजन भूत शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं होगी। इतनी सी बहुत क्लियर बात है। अब अप्रयोजन भूत कौन है और कौन प्रयोजन भूत है, अब इसका डिसीजन का आपको करना है। तो उसमें क्लियर लिखा है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तन माही विपर्य, तो लिखा के नहीं लिखा है। वैसे तो सारी सर्वक भगवान की वाणी है, पूरा प्रथमानि योग, पूरा चरणानि योग, पूरा करुणानि योग, सब जनन भगवान की वाणी है ना। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया है, आचार्यों ने जो लिखा है, गंधर्व देव ने जो गूंथा है, वो इसलिए लिखा और गूंथा होगा कि कोई नहीं पढ़े, क्यों कि सब पढ़े, किस लिए गूंथा होगा, सभी पढ़ने के लिए ही है ना। फिर भी हमें अपनी परिस्थितियों के आधार पर हमें निर्णय तो करना ही पड़ेगा कि साहब हम कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करें। मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे आकर कोई पूछे, साधारण ग्रस्त दिन रात गृहस्थी में उलझा हुआ, जो सारी जिंदगी में रोजाना घंटा आध घंटा भी मुश्किल से निकाल सकता है, तो आपसे पूछा कि मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं, तो आप क्या बताएंगे कि सभी शास्त्र पढ़ने योग्य हैं? मैं बोलता हूं क्या बताएं कि पांडव पुराण पढ़ना, क्या बताएं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो यही तो कहेंगे कि आत्मा के स्वरूप का बताने वाले जो मूल शास्त्र हैं, जो भेद विज्ञान के मूल शास्त्र हैं, वो पढ़ो, यही तो कहोगे कि नहीं कहोगे? जिसमें आत्मा की मूल बात है, मैं किसी किताब का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, वही बात तो आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि ये पढ़ो, तो उनमें भी छटनी करेंगे कि नहीं, तो उनका अपमान के करने के लिए नहीं है ये बात। लेकिन वो कहते आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा क्या चीज है, आज तक किसको आत्मा समझ लिया गया है, उन दोनों को जानकर तो ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं इतना जानो, यही तो कहेंगे ना, प्रयोजनभूत बातें जानो, पर वही बात यहां कही है। अब भाग्य दुर्भाग्य से, भाग्य से, सद्भाग्य से पीछा अध्याय बंद का प्रकरण था बंधाधिकार था, तो उनने ये कह दिया कि रे तुम बंद की चर्चा कितनी भी करो, कितना ही उसका ज्ञान करो और कितना ही उसका चिंतन करो, तीन गाथाएं ज्ञान करो में और तीन गाथाएं चिंतन करो, लेकिन उससे तुम्हें भगवान आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। और कैसे होगी वो बताने वाले हैं। तो कल अपन ने थोड़ी चर्चा शुरू की थी कि सारे जगत को दो भागों में बांटो और एक प्रज्ञा रूपी छेनी से उसको दो हिस्से में बांट दो, एक में आत्मा, एक में सारा जगत, और सारे जगत को छोड़कर अपने आत्मा में जम जाओ रम जाओ, बस उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इतनी सी तो बात है। अब यहां किसी के विरुद्ध अविरुद्ध ये बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब देखो, अब जो कठिन बात शुरू हो रही है, इसी गाथा की टीका में आचार्य जयसेन एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालते हैं जो आत्मार्थी मोक्षु भाइयों के लिए अत्यंत उपयोगी है, वह इस प्रकार है। अब देखो ये भी ऐसा ही विषय है कि बहुतों के पेट में दर्द होगा, इसलिए मैं आचार्य के वाक्यों को सामने रख के लाया हूं और बात आपसे करता हूं। यहां शिष्य कहता है ये सब देखो, वो जैसे आचार्य का है, ये हिंदी अनुवाद मैंने किया है, मूल संस्कृत में है, 700 वर्ष पुरानी बात लिखी गई है। यहां शिष्य कहता है कि प्रकृत ग्रंथ में निर्विकल्पक स्वसंवेदन ज्ञान कहा है वह घटित नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार जैन मत में सत्तावलोकन रूप चक्षु दर्शन आदि दर्शन निर्विकल्प कहे हैं, उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा है, किंतु वह निर्विकल्प भी विकल्प का जनक होता है। जैन मत में तो ज्ञान विकल्प का उत्पादक होता है ऐसा नहीं है, किंतु ज्ञान स्वरूप से ही सविकल्प और स्वपर प्रकाशक है। ये बहुत खतरनाक बात है। हम तो निर्विकल्प मानते कि निर्विकल्प ज्ञान होगा तो हमें आत्मा की अनुभूति होगी। अब ये कहते ज्ञान का तो स्वरूप ही सविकल्प है, और हम तो कहते हैं अकेले अपने को जानेगा पर को नहीं जानेगा तब आत्मा की अनुभूति होगी, और वो कहते हैं ज्ञान का तो स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, वो एक समय भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, प्रति समय केवल ज्ञान हो जाए तब भी, अनुभूति के काल में तब भी, और वो निर्विकल्प नहीं हो सकता। अब है ना खतरनाक बात। अब जो बिल्कुल नए आए होंगे अब उनके लिए क्या खतरनाक है क्या गैर खतरनाक है कुछ पता नहीं, क्या सविकल्प होता है और क्या स्वपर प्रकाशक होता है। अब मैं सविकल्प स्वपर प्रकाशक को समझाने में उलझ के रह जाऊं तो ये तीन पेज में आपको कैसे समझाऊंगा, इसलिए मुझे वो लोग माफ कर देना। सुबह मैंने सबके अनुकूल बात बताई है, जब भी आप मुझसे कहेंगे तब मैं फिर बिल्कुल सरल करके जो भी विषय कहोगे समझा दूंगा, ख्याल में ही ना। और मैं अभी इस बात को आपको समझना पड़ेगा पंकज भाई, आचार्य देव की बात है। अब इसका समाधान करते हैं। वस्तुतः बात यह है, ये सब आचार्य की बात है, सिर्फ हिंदी मेरी है, लेकिन मैं बहुत अच्छी सरल भाषा में बढ़िया हिंदी में अनुवाद करता हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है जो आचार्य की बात के नहीं रही, इन्हीं की बात वाक्य होगी। वस्तुतः बात यह है कि जैन मत में ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा है ना। अब इतनी इस बात पे आ गए ना। अब जरा से वह इस प्रकार है, कैसा है अब वो निर्विकल्प सविकल्प कैसा है, ये दोनों की बात बताते हैं ना, है ना। जिस प्रकार विषयानंद रूप सराग सुसंवेदन ज्ञान, देखो आप क्या कहते हो, सुसंवेदन ज्ञान अकेला आत्मा ही क्या होता है, विषयानंद रूप पांच इंद्रियों के विषयों को जब आप भोगते हो तो वहां जो राग सहित सुसंवेदन ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टियों को भी अनादिकाल से वो होता है, समझना है, कभी सुना ही नहीं होगा, है ना। कि स्वसंवेदन तो स्व का संवेदन होना ही चाहिए ना, तो वो कहते वो स्व ही तो है पर का थोड़ी है। देखो जिस प्रकार विषयानंद रूप सराग स्वसंवेदन ज्ञान सराग संपत्ति संवित्ति विकल्प रूप से सविकल्प ही है, उसमें सराग ताकि अनुभूति होती है और विकल्प रूप होता है, ऐसा वह सविकल्प ही है तो भी शेष अनिक्षित सूक्ष्म विकल्पों के सद्भाव होने पर भी उसी काल में वो तो चाहता है कि बस मैं इसमें ही मग्न रहूं, इतना अच्छा लगता है उसे विषयानंद, लेकिन तो भी दूसरे सूक्ष्म विकल्प उसके चलते रहते हैं। सुबह जल्दी जाना है, वो आ जाएगा, 8 बजे की मीटिंग फिक्स करी है, क्यों सोचना था ना, तो चलता रहता है ना सर करके। तो भी शेष अनिक्षित सूक्ष्म विकल्पों के सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं होने से निर्विकल्प भी कहते हैं उसी को, दो नहीं है, वो जो वेदन हो रहा है वो तो सविकल्प है, हम समझते हैं वो वेदन निर्विकल्प है और बाकी के जो विकल्प आ रहे हैं वे सविकल्प है, वो कहते हैं वो वेदन सविकल्प है और बाकी के जो विकल्प आ रहे हैं ना उनको हमने गौण करके अभाव रूप कह दिया, इसलिए उस ज्ञान को हमने पूरा निर्विकल्प कर दिया। निर्विकल्प उसकी अपेक्षा है कि उन विकल्पों को गौण किया, ये तो उदाहरण है। उदाहरण है तो सिद्धांत क्या है सुनो। उसी प्रकार स्वशुद्धात्म की संवित्ति रूप वीतराग सुसंवेदन ज्ञान, ये आत्मा का अनुभूति वाला ज्ञान है, भी संवित्ति रूप एक आकार वाला होने से सविकल्प है। देखो सुनो, सविकल्प होने पर भी अब उसी काल में अनिक्षित सूक्ष्म बाह्य विकल्पों के सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता होने से शुद्धात्मा की उनकी मुख्यता नहीं होने से शुद्धात्म की अनुभूति को निर्विकल्प कहते हैं। ये निर्विकल्प वहां कुछ नहीं कर, निर्विकल्प नहीं है, वो जो अनुभूति हो रही है वो तो सविकल्प ही है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है, लेकिन जो बाकी के विकल्प हो रहे हैं जिनको वो खुद भी गौण कर रहा है, विकल्प आ जाता है उसके ज्ञान में भी गेय बन जाता है। तो सर अब सुबह की सुबह देखेंगे, अभी जो काम है उस काम में रहो, सुबह की सुबह देखेंगे, करता क्या नहीं करता है, है? अपन कहते हैं ना बर्क बाये भाये लू बर्क प्ले भाये लू प्ले हैप्पी एंड गे, काम के समय काम करो और खेल के समय खेलो, खेल के समय काम का विकल्प करो तो खेल का मजा भी खराब, और खेल के समय काम का विकल्प करो तो काम का सुने, काम के समय खेल का करो तो काम बिगड़ जाएगा। अपन कहते हैं ना तो वो चीज बीच बीच में आती है, उसे हम दबा देते हैं ना, उसका नाम है गौण करना। और उस वजह से उस ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। पॉजिटिव निर्विकल्पता पॉजिटिव नहीं है भगवान, वो नेगेटिव है। वस्तुतः तो वहां भी विकल्प खड़े हो रहे, यहां भी हो रहे और वहां, लेकिन उन विकल्पों को गौण किया तो गौण करने की अपेक्षा वो निर्विकल्प है। वास्तव में तो दोनों दृष्टि से सविकल्प ही है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है। देखो भैया, वो रागात्मक विकल्प अलग चीज है, उसको यहां मत लेना। और एक तीसरा और होता है विकल्प, पांच प्रश्न में से कोई प्रश्न, तीन प्रश्न करो, इसको भी विकल्प बोलते ना, ऊपर करो या अथवा एक करो, बोलते अल्टरनेट, अथवा आता और नहीं, अंग्रेजी का और नहीं, हिंदी का और नहीं, अंग्रेजी का और, हिंदी का और नहीं, ये करो या ये करो, उसको भी विकल्प बोलते हैं। क्यों, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, उसको भी विकल्प बोलते हैं। यहां तो ये कह रहे हैं साकारम ज्ञानम और निराकारम दर्शनम। इन नियम सार में बहुत झगड़ा है, अभी विस्तार से पढ़ना नियम सार को तो उसमें आएगा। मैंने लिखा है, अभी पूरी करके आया हूं टीका, तो उसमें ज्ञान दर्शन निराकार है और ज्ञान साकार है, समझे ना। अब वो बहुत बहुत बातें हैं, और तो स्वपर प्रकाशक क्या है, तो कहते दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है, इस तरह मिलकर के आत्मा स्वपर प्रकाशक है। और फिर उसका डच के निषेध किया है, लेकिन अब धबला की शैली को नियम सार की शैली काट रही है ना, तो वास्तविक क्या है। और वो जो आप कहे धबला की शैली है, वो गैर दिगंबरों की भी शैली है। मुझे शब्द नहीं मिल रहा था बढ़िया, समझ है ना। मैंने कहने की कोशिश की है, तुम समझने की कोशिश करना है। गैर दिगंबरों की शैली है वो,
गैर दिगंबर, दिगंबर नहीं।
तुम अजैन बोलते हो तो जैन नहीं है वे। अब समझ आए ना, गुरुदेव ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उसमें जब वो पढ़ो तब देख लेना, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है और उसका बहुत जोरदार खंडन किया है। अब यहां जो बात चल रही है उसे आप बड़ी गंभीरता से समझना। ज्ञान का स्वभाव विकल्पात्मक है, साकारम ज्ञानम और निराकारम दर्शनम, इसका अर्थ ये है। दर्शन सिर्फ निराकार होता है, निराकार माने उसमें ऐसे विकल्प नहीं होते हैं, वो जो बिल्कुल सामान्य अवलोकन जिसे बोलते हैं, सामान्य अवलोकन दर्शन में होता है, और विशेष अवलोकन माने भेद से समझना। एक ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, चरित्र स्वरूप है, इसमें अनंत गुण हैं, असंख्य भेद हैं, ऐसा भेद करके जानना, इसका नाम है विकल्प। सामान्य अवलोकन दर्शन है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, समझ में है ना आपकी ना। दिगंबरों में ये मानते हैं कि केवल ही भगवान के केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, है ना। और दूसरी जगह ये मानते हैं कि वे आगे पीछे होते हैं। आप समझ लेना भाई। अभी यहां देखो, अभी ये समस्या इसलिए बड़ी है, आपको लगती होगी जो नए नए आए हैं ना, इसमें क्या की समस्या है, प्रॉब्लम से, हम तो पूरा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका हल कैसे कैसे किया जाता है हम सब जानते हैं, अब इनको ये काय की प्रॉब्लम है, नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि हमने ये रट रखा है कि आत्मा की अनुभूति शुद्धोपयोग निर्विकल्प ज्ञान में होती है, उसका नाम निर्विकल्प अनुभूति है। आप सुने ना, तो सविकल्प को हमने ऐसा ये मान रखा है कि जैसे ये तो बिल्कुल सीधा पाकिस्तान से आया हो। वो जो रागात्मक विकल्प है ना, उसका निषेध की अपेक्षा रागात्मक विकल्प नहीं है, उसके निषेध की अपेक्षा निर्विकल्प का। ऐसे ही भगवान आत्मा की अनुभूति स्व के जानने रूप होती है। ये बहुत स्थूल कथन है पंकज भाई, अनुभूति के काल में भी पर जानने में आता रहता है। और कोनो सातवें गुणस्थान में, आठवें गुणस्थान में, नौवें गुणस्थान में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति होती है। अर्थ संक्रांति माने एक ज्ञान, एक पदार्थ से ज्ञान पलटकर दूसरे पदार्थ पे जाना। तो अपना आत्मा तो एक ही है, अब पलट के दूसरे पे जाएगा तो पर ही होगा ना। एक गुण से दूसरे गुण पे जाना तो भेद ही रूप होगा ना, और एक पर्याय से दूसरी पर्याय पे जाना वो भी वही हो गया ना। तो अनुभूति के काल में भी पर जानने में आता रहता है। तो सुपर प्रकाशक ज्ञान का सुपर प्रकाशक जो स्वभाव है वो कहीं नहीं छूटता है। और नियम सार में ये सिद्ध किया है कि ज्ञान भी सुपर प्रकाशक, दर्शन भी सुपर प्रकाशक, और आत्मा भी सुपर प्रकाशक। ऐसी बिल्कुल तीन पंक्तियां लेन से है, रतन सार की मूल गाथाओं, नियम सार की मूल गाथाओं में। देखो किसी को पढ़ते हैं वो, उस प्रकार स्वश्रद्धात्म की समृद्धि रूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवृत्ति रूप एक आकार वाला होने से स्वसविकल्प होने पर भी, वो ज्ञान सविकल्प ही है, होने पर भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प बाह्य विकल्प का सद्भाव होने वे भी हैं, तो उनकी अपेक्षा भी सविकल्प हो गया ना। अभय जी, फिर उनकी मुख्यता नहीं होने से शुद्धात्मा की अनुभूति को निर्विकल्प कहते हैं। सिर्फ उनकी मुख्यता नहीं हुई इसलिए हमने निर्विकल्प का उसको गौण करके, है तो वो भी और ये भी और दोनों सविकल्प हैं, और दोनों को जानने वाला होने से सुपर प्रकाशक है ना। नई बात कुछ नहीं, नया लगता ना। देखो, इहा मति ज्ञान पूर्वक अथवा बुद्धि पूर्वक। जगदीश भाई ये क्या है, इहा मति ज्ञान पूर्वक के बदले में अथवा डाल के बुद्धि पूर्वक क्यों लिखा? हेमरन जी, इहा मति ज्ञान जानते किसे कहते हैं? अवग्रह जो पहले होता है दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, तो ये होते हैं निराकार, ये होते हैं सामान्य अवलोकन। फिर उसके बाद होता है अवग्रह, सामान्य जानकारी। फिर उसमें देखो, या माने अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा और प्रयत्न होना, उसका नाम ईहा है। तो विशेष जानने की इच्छा हुई ना, और प्रयत्न हुआ ना, विशेष जानने का प्रयत्न, और तब तो फिर अभाय होगा ना। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक कहा, क्योंकि बुद्धिपूर्वक विशेष जानने का जो विकल्प होगा वो तो बुद्धिपूर्वक ही होगा ना। तो चाहे ईहामती ज्ञान पूर्वक कहो और चाहे बुद्धिपूर्वक कहो, एक ही अर्थ हो गया, समझ गया। यहां पर वो राजमल जी का बुद्धिपूर्वक नहीं लेना, वो राजमल जी का झगड़ा मैं यहां नहीं उठाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इशारा किया है। इहामति ज्ञान पूर्वक अथवा बुद्धिपूर्वक स्वसंवृत्ति के आकार रूप, आकार रूप माने विकल्पात्मक अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी उसी समय अनिच्छित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी होते हैं। जब उस समय बाह्य विकल्प आत्मा को जान रहा है और बाहर का भी विकल्पात्मक ज्ञान हो रहा है, विकल्प होते हुए मैंने जानकारी होने पर भी उसी प्रकार से वो स्वपर प्रकाशक है। यदि वो उनको नहीं जाने तो स्वपर प्रकाशक नहीं रहेगा। सर्वसम्मति के काल में सिद्ध कर रहे ना कि पर पदार्थों का भी जानना होता रहता है क्या, लेकिन वो उनको गौण करके हम इस आत्मा को ही जाना और सब नहीं जाना। अपने कहते ना उपलखाद खुजावते, उपलखाद खुजावते क्या है भैया, चढ़ाला ने लिखा कि मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल शांत से बैठे हैं। हिरण आया तो उसने समझा कि ये तो पत्थर की सलाह है, मूर्ति ये पत्थर की है, ऐसे ध्यान में बैठे थे और उसे खुजली हो रही थी, तो इस सिला से जैसे अपना पीठ को घिसता है ना खुजली मिटाने के लिए, वो मुनिराज से ऐसे खुजता है। तिन सुथिर मुद्रा जान कर देख कर जो उपल खाद खुदाते, पत्थर समझकर वे खाद खुदाते हैं, ऐसा स्थिर बैठे वे मुनिराज हैं। तो उनको वो खाद खुदाई तो पता चला हुआ कि नहीं, कि आत्मा के ध्यान में देखे नहीं, एक भाई सबके नहीं नहीं बिल्कुल पता नहीं चला। और इसलिए तो उन्होंने उदाहरण दिया कि पता नहीं चलता है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि पता चलता है, ठंडी हवा आए तो वो भी पता चलता है, गर्म हवा आए तो उसका भी पता चलता है, पर आत्मा का अनुभव में थोड़ा सा कसर रह जाती होगी, नहीं नहीं पक्का आत्मा का अनुभव भी होता है और ये भी पता रहता है। क्यों, क्योंकि आत्मा स्वपर प्रकाश है। आप क्या कह रहे, स्वभाव है दोनों को जानना, वो तो स्वभाव कैसे रुकेगा। लेकिन हम बाद में पूछा कि आपको हिरण खाद खुदा रहा था तो कुछ पता है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्रिकेट खेल रहे हैं और पैर में कोई कांटा चुभ गया और खून निकल आया तो खेलते रहे, पता ही नहीं चलता है क्यों, खिल जाता है यहाँ, जब घर आते हैं और शाम को देखते हैं तो यहाँ घाव है और यहाँ से खून निकला है और यहाँ सूख गया है, लगा है शरीर में, क्यों पता चला कि नहीं चला, पता नहीं चला होगा, चला तो होगा कि कोई चिंटी सी काटी है किसी ने, क्यों, लेकिन फिर बाद में याद नहीं रहा, क्यों नहीं रहा यार, इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो अवग्रह ज्ञान हुआ, वो ईहा नहीं हुआ, वो उसमें विशेष जानने का प्रयत्न नहीं हुआ कि क्या हुआ, पता तो चला किसी ने मच्छर ने काटा है लेकिन क्या हुआ इसका हमने प्रयत्न नहीं किया तो वो विशेष जानकारी नहीं आई। याद कब रहता है, जब ईहा हो, फिर अवाय हो, फिर धारणा में आ जाए, फिर याद रहता है। वो ज्ञान धारणा तक पहुंचे तो याद रहता है। तुम्हें याद नहीं है तो इसका मतलब वो ज्ञान धारणा तक नहीं पहुंचा, लेकिन ज्ञान धारणा तक पहुंचे तभी ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो वो अवग्रह से ही शुरू हो गया, वो जानने में तो परपदार्थ आ रहे हैं ना, आत्मा के स्वर प्रकाशक का ध्यान तो भंग नहीं हुआ और वो वैसे ही नहीं आ रहे, तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा और उसको मालूम कैसा होता है। मुझे ये रूमाल का ज्ञान हुआ तो इसमें निमित्त कौन है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तो ये मति ज्ञान कौन सा, मति ज्ञान कौन सा, क्या रूमाला वर्ण नाम का मति ज्ञान, क्या क्या रूमाला वर्ण नाम का मति ज्ञान, क्या हमने तो कभी नहीं सुना कि चश्मे का ज्ञान हुआ, कि कौन सा चश्मा वर्ण नाम का मति ज्ञान का संयोजन हुआ। इतने मति ज्ञान के भेद हैं, लिखा है पंचाध्याय में, कलश्टिका में लिखा है कि सम्यक दर्शन कैसे होगा कि स्वानुभूत्यावरण कर्म के छयूषण से। जब स्वानुभूत्यावरण कर्म हो सकता है तो रूमालावरण क्यों नहीं हो सकता है? तो भेद हमने उनके थोड़े से गिना दिए। माने हर ज्ञान की में ये योग्यता प्रति समय रहती है कि वो किस ज्ञेय को जाने, माने उस ज्ञेय को जानने वाला जो आवरण है उसका छयोग समुचय होता है। गणपति पर्याय में पढ़ा होगा ना भाई जी, समझे? तो उस वक्त उसको स्वानुभूत्यावरण कर्म का छयोषण भी है और पीछे से सुई चुभी तो सुई चुभावरण कर्म का छयोषण भी है। इसलिए ज्ञान का वो गेय बना लेकिन अवग्रह तक आगे रह गया, इसलिए बाद में याद नहीं रहा।
कोशिश नहीं की क्या?
हाँ, कोशिश नहीं की क्योंकि रुचि नहीं थी। वो तो रुचि पे होता है। ज्ञान तो ज्ञान में तो पता सब चीजें आती हैं, लेकिन जिसको हम विशेष जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर ईहा करते हैं, फिर किसी नक्की पे पहुंचते हैं और फिर धारणा में बात जाती है, वो बात याद रहती है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जयपुर से जब बम्बई आए थे तो रास्ते में बहुत पेड़ पौधे दिखे होंगे, तो कुछ याद है? क्या कहा था? नीम का पेड़ दिखा था, पेड़ दिखे थे। हमने कोशिश ही नहीं की कि ये नीम का है कि आम का है, क्यों? अब कुछ याद नहीं है। और यदि कोई दुर्घटना घट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो भी आपके आंख में आपने तेरी कौन क्या हुआ, फिर देखें कि एक आदमी का है, टांग कट गई है, खून बह रहा है, तो एकदम ईहा हो गया, फिर अब आए एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, फिर वो धारणा में पहुंच गया, तो फिर आगे अरे साहब आज तो रात को ऐसी दुर्घटना हुई, मैं तो सो रहा था, तो सुनाओ किस्सा क्यों? और हजारों चीजें ऐसा प्रति समय होता रहता है। बहुत सा ज्ञान ऐसा होता रहता है कि जो हमारी धारणा तक नहीं जाता है, स्मृति तक नहीं जाता है, क्यों? तो अच्छा है ना, क्या बुरा है? क्या कहते उस कूड़ा करकट को स्मृति में भर के? वो कूड़ा करकट था ना, उस कितना भरते, वो किस किस को याद करते, जरा समझना मेरी बात कि जितनी बातें तुम्हें याद हैं कि बाटिया तो चूरमा, बाटिया तो जयपुर का ही है, एक दफे खाया था, हम आए थे, गोदका जी ने बनवाया था, क्यों? अब कितने दिन का याद रखे थे चूरमा बाटी थोड़ी जगह खाली का, इस माथे में तो आत्मा घुस है तो वो अब फिर सुनो कमल, वो हमारे अभी याद आया तो फायदा हुआ ना। अरे उसने वर्तमान की ज्ञान पर्याय का भी सत्यानाश कर दिया, वो ज्ञान का गेय बन गया। उसे रोता तुमने यहां से निकाल निकाल के उन खोटी बातों को, अपने ज्ञान का गेय बनाया, तो ज्ञान पर्याय तो बर्बाद हो गई। वो आत्मा के जानने में लग सकती थी कि नहीं? बस हम होता है ना, ये बैठ जाते हैं छोकरे पर के दादा कुछ सुनाओ, दादा कुछ सुनाओ बचपन की, और फिर हम वहां निकाल निकाल की कूड़ा करकट, लेकिन ऐसा हुआ था, एक दफे ऐसा हुआ, हाँ बहुत अच्छा दादा, एक दफे आप ये लिख दो आत्मकथा, मैं कह संयम साथ छोड़ के तेरी आत्मकथा लिख दे सुना क्या करे, बोलो लिख दो। वो कूड़ा करकट है जो बचपन का है, वो निकाल निकाल के फिर ज्ञान का गेय बनाऊं और फिर उसे लिखने बैठूं, तो कितनी देर तक ज्ञान का गेय बनाए रहूं, तो अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय का कितना दुरुपयोग है, बोलो बेटा। वो वर्तमान के ज्ञान को खाती है तुम्हारी वो ज्ञान पर्याय, सोचो भैया। क्या की खुशी है? आपको तो सब याद है, आपको तो सब याद है, हम इतने खुश होते हैं सब याद है जैसे कोई बस हम भगवान बन गए। अरे जो भूलने लायक था उसे भूल जाना चाहिए ना, इसके लिए तो एक परिवर्तन होता है। अब नाराज मत हो जाना, मेरे मुंह पे आ गया तो बोल देता हूँ, उन्हें तो दांत स्मरण है। तो क्या हुआ, पिछले भव का कूड़ा करके याद आ गया। ऐसी तो महान आत्मा तो भैंसी जैसी एकाध होती हैं, जिन्हें समोसरण याद आता हो, अच्छी बातें याद आती हो। जैसे नालायक लाखों हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, जिनमें जिनको राग देश याद आते हैं। क्यों, हिंदू मुसलमान सबको आता है क्या नहीं आता? कोई दांत स्मरण कोई बड़ी बात थोड़ी है दिनेश भाई। लेकिन उसमें अच्छी बात का स्मरण में आए तो तत्काल आए, कभी आए वो अच्छी है। वो जाति बहन जी का जात स्मरण अच्छा नहीं है, वो बात अच्छी है, समझ में आना। जब मैं यदि ये बात कहता और ये बहन जी वाली बात साथ में नहीं कहता तो मुझको यहाँ तक घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। अब क्या करूं, मैं वो वस्तु स्वरूप बताऊं तो बताऊं कैसे? ये डर लगातार हर जगह ना, क्यों समझ में आया कि नहीं आया कि ये तो बहन दादा से मन की बात कर रहे हैं कि वो बेकार है तो बहन श्री की निंदा कर रहे हैं। कहां से निंदा होगी बहन श्री की भाई साहब? तीर्थंकरों को भी तो जब वैराग होता तो दादा स्मरण होता है ना। ऐसा ज्ञान पूर्व का याद आवे जो याद रखने लायक नहीं है, चाहे वो पूरा भव का याद आवे था इस भव का याद आवे, दोनों ही खोटे हैं। समझ में आई ना? अरे तेरी धारणा है तो उसमें अच्छी अच्छी बातें याद रखता ना, जो तूने ये पढ़ा है सुना है ये याद रखना, तो वो चाहे इस भव का हो चाहे पिछले भव का हो, कभी का याद आ रहा अच्छा ही अच्छा है, खुद कहता है वो बुरा है। समझ में आए ना? लेकिन अकेले तुम उस पर ही लट्टू हो गए हो, समझ में ना, कि पिछले भव में इसने मुझे पानी में डुबा के हत्या कर दी थी, ले गया था और मैं डूबे तैर के निकलना चाहता था तो ऐसे पकड़ के दबा दिया था। अब ये याद आए तब उसको मैं मारूंगा, बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। याद नहीं आता तो अच्छा रहता ना। बोलो आप बोलिए क्यों? जैसे कुमती होता है, कुमती होती है, तो ये भी कुमती हुई ना, दांत स्मरण भी तो मति ज्ञान का ही भेद है ना। और उसमें गजब क्या है मैं आपसे पूछता हूं। देखो मैं 78 वर्ष का हो गया तो मुझे 72 वर्ष की बातें याद हैं, है ना। अब जब मैं 8 वर्ष का था तब भी मुझे 72 वर्ष की बातें याद रह सकती थी ना। अब वो 72 वर्ष इस भव में पूरा नहीं होता तो पिछले भव में पूरा होता। क्यों, आत्मा आत्मा तो वही है ना, देह को थोड़ी याद रहता है। हमें तो दातुन मैन से इतना सिद्ध करो कि आत्मा की सत्ता है, पूरा भव और परभव भी है, इसके लिए हमें बहुत जरूरी है दातुन मैन की बात करना, ये अच्छी बात है। तो अब जब 72 वर्ष की बात याद रह सकती है तो पीछे की 72 वर्ष की पीछे की क्यों? तो और 72 वर्ष अब इस भव में पूरे नहीं होंगे तो पिछले भव का याद आ जाएगा। तो ज्यादातर आप देखो बचपन में याद आता है फिर धीरे धीरे भूल जाता है, भूलने लगता है। जैसे हमको 50 वर्ष की बातें याद है ना तो धीरे धीरे पुरानी बातें भूलने लगते हैं कि नहीं भूलने लगते हैं। तो इसलिए वो कोई गजब की बात नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान में जो आत्मा अनुभव में आया वो महत्वपूर्ण था, वो ज्ञान में था तो वो तो सविकल्प ही है वो ज्ञान, और जो पर पदार्थ आए वे भी सविकल्प ही आए, लेकिन उन्हें गौण किया और उस गौण करने की अपेक्षा आत्मा को अनुभूति को निर्विकल्प कह दिया। बोलो आत्मा को निर्भूति को निर्विकल्प कहने का मतलब क्या है? क्यों समझ में आता? बहनों को भी आता होगा ना समझ में, तो बहुत कठिन हो गया, क्या करे। विचार माने विकल्प थोड़ी है, विचार माने विकल्प थोड़ी है, जिसमें मन निमित्त हो ऐसे विकल्पों को विचार कहते हैं। असैनी के भी तो ज्ञान होता है ना इंद्रियों के निमित्त से, तो मन नहीं है तो उसके विचार नहीं है तो ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है ना उसके। देखो इहामति पूर्वक अथवा बुद्धि पूर्वक सुसम्मति के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास के होने पर भी उसी समय अनिच्छित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी होते हैं, उसी कारण से स्वपर प्रकाशक सिद्ध होता है। इस प्रकार निर्विकल्प और सविकल्प ज्ञान का स्वपर प्रकाशक ज्ञान का यह कथन अत्यंत स्पष्ट है। यदि इसका व्याख्यान सुनो, ये सब जयसेनाचार्य के शब्द हैं, आगम अध्यात्म और तर्क शास्त्र के अनुसार किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाता है। यहाँ अध्यात्म शास्त्र होने से उसका कथन विस्तार से किया जाना उचित नहीं है, इसलिए हम और विस्तार से समझाते कैसे होता है। आचार्य जयसेन के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि आत्मानुभूति के काल में आत्मा मुख और गौण रूप से स्व और पर दोनों को ही जानता है। आत्मानुभूति के काल में तो स्व को मुख्य रूप से और पर को गौण रूप से, तो ये तो हमने अपने ज्ञान में उनको मुख्य गौण किया है, वो तो जानता ही है ना, वो कुछ जानने में थोड़ी उसे मुख्य गौण किया उसने, समझे ना। और ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक होने से अनुभव के काल में भी वह सविकल्प ही रहता है, क्योंकि उसकी आत्मसम्मति तो साकार काल में भी सविकल्प ही रहता है, क्योंकि उसकी आत्मसम्मति तो सविकल्प है ही, अनिश्चित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते ही हैं। अब वे भी सविकल्प ही हुए ना, पर उन्हें गौण करके ही आत्मानुभव को निर्विकल्प कहा जाता है। अब आप कह दो कैसे निर्विकल्प कह दिया, अब निर्विकल्प कहने का की अपेक्षा कितनी कमजोर है और सविकल्प होने की अपेक्षा कितनी मजबूत है, कि है तो वो वास्तव में सविकल्प ही। ख्याल में, निर्विकल्प तो कह दिया जाता है, कौन सी अपेक्षा, आत्मा के जानने की अपेक्षा नहीं, आत्मा में तो कोई निर्विकल्पता है ही नहीं, सुनना, वो तो जो पर को भी सविकल्प ही जाना था उनको गौण करने की कर इसे निर्विकल्प का, बेविकल्प नहीं, गौण करके नहीं, इसलिए इसको निर्विकल्प कह दिया। अभी तो उसी वजह से नाम में ये कह दिया, ये ऐसा है। अभिनंदन जी है, हादसाना अभिनंदन जी हो तो है ना, पर नहीं है, कोई बात नहीं है, अपने कमरे पर सुन रहे होंगे, वो हमारे यहाँ पढ़ते थे अभय जी, अभिनंदन जी, जतीश भाई सब, फिर उनका भांजा भी वहां पढ़ने आया है ना, राकेश नाम है उसका, अभी है दिल्ली में है उसका, अभी उसकी लड़की हमारे यहाँ पढ़ती थी, वो शास्त्री में टॉप किया उसने, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अब क्या लड़कियां भी पढ़ती हैं, हम तो समझते हैं लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं बेचारी, बहुत तकलीफ पाकर पढ़ती हैं, वो आए अपने किसी गाइडेंस को साथ में रखें तो उन्हें रहने को हम कमरा दे देते हैं और पढ़ाई में सारी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही खर्चे से रोटी बनाकर खाना है अपने ही कमरे में, और एक आदमी उसके परिवार का साथ रहना बहुत जरूरी है। अब इतनी समस्या पार करके वो आती है, एक लड़की ऐसी आई कि चूंकि उसका कोई गार्जियन हमारे यहां रहने को तैयार नहीं हुआ तो हमने अपने रहने को जगह नहीं दी, तो आसपास किराए का लेकर के मकान और वहां रही रोटी बना के खाकर। अब बहुत उसने हमसे हाथ पैर जोड़े, लेकिन हमने कहा हमारा जो नियम है हम नहीं कर सकते, लेकिन वो उपाध्याय ने टॉप किया, वो टॉप कर
बोर्ड में
टॉप कर गई। मेरा मन क्या हो गया, इतनी रुचि वाली جگہ نہیں دی، کرائے پہ جگہ نہیں لے کر کے رہی، اور وہاں آ کر کے پڑھی ہے اور ٹاپ کر گئی لڑکیاں. میں نے کہا کوئی نہ کوئی راستہ نکالو اس کو رکھنے کا. کیا 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 کریں بولیے، ہم نہیں رکھ سکتے، ہماری تو بہت لمیٹیشن ہے. لمٹ ہی تو ہے، جتنے ہماری پڑھائی خرچے کی ویوستھا ہوگی اتنے ہی کو تو رکھ سکتے ہیں. ایک لڑکے کو رکھنے میں سالانہ 40,000 روپے خرچ آتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے جب 5 سال میں شاستری بنتے ہیں. تو میں آپ سے اپنی بات کیا چل رہی تھی،
راکیش ماما.
ہاں راکیش ماما، تو پھر راکیش ماما وہ تو بھانجا تھا ابھینندن کا، وہ ابھینندن کو ماما کہتا تھا، کہہ گئی نا، تو سب نے اس کا نام ماما رکھ دیا، اور آج تک وہ راکیش ماما کہلاتا ہے. وہ ابھی کتنے ہمارے یہاں سے پاس کیے ہوئے، اسے 30 برس ہو گئے. اب تو اس کی لڑکی ٹاپر ہوئی شاستری میں، سمجھ لو، اب سمجھ آئے نا. پھر بھی وہ آج تک ماما، اب کیسا ماما ہے، اب وہ کتنا نکلی ماما ہے. اب ایک ساتھ تو دیکھو کہ یہ ماما ہے کہ کس کا، ابھینندن کا. ارے وہ ابھینندن کو ماما کہے تو سارے ودیارتھی اسے ماما کہنے لگے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بھانجے کو ماما کہنے لگ جائے. یہ جگت کا ویوہار کتنا وچتر ہے. اب مجھے سب لوگ ساری دنیا دادا دادا، امریکہ میں بھی جاؤ تو دادا دادا دادا. میں کہ بھیا میں نے کبھی دادا گیری نہیں کی، انہوں نے زبردستی مجھے دادا بنا دیا. ہوا کیا، ٹوڈرمل جی نے لکھا ہے اس میں موکش مارگ پرکاشک کے، اس میں ہوا کیا، ٹوڈرمل جی نے لکھا کہ موکش مارگ پرکاشک لکھنے میں میں نے کچھ نہیں کیا. پھر لوگ تو کہتے ہیں کہ تم نے لکھا، لوگ تو کہتے ہیں تم نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہوا تھا کہ گیان راگ تو میرو ملو، او کرنو دھرنو تنو کو بھلو، او کاغذ مسیح اکثر آکار لکھیا ارتھ پرکاشن آر. اس میں گیان تو مجھے ہوا تھا اور راگ بھی ہوا تھا کہ لکھوں، تو گیان اور راگ تو میرا ملا ہے، ان نے کچھ کیا نہیں ہے. اور کرنو دھرنو تنو کو بھلو، ایک کرنا دھرنا ہوا اس میں ہاتھ پیروں نے کام کیا، میرے تھوڑی ہے، میں نے کیا کیا. کرنو دھرنو تنو کو بھلو، اور کہتے تھے سیاہی اکثروں کے آکار میں اور کاغذ پہ پھیل گئی. کاغذ مسیح اکثر آکار، سیاہی کاغذ پر اکثروں کے آکار میں پھیل گئی، اس پرکار اس سیاہی نے اس موکش مارگ پرکاشک کے گومر صاحب لکھا ہے. اب تمہارا نام کیسے آ گیا، کہ وہ میرے کو راگ ہوا تھا نا، بس کچھ اگر آپ نے پھنس گیا، اور لوگ کہنے لگ گئے کہ ٹورنامنٹ نے لکھا، سمجھ گئے نا. اتنا سی بات تھی، اتنا اپرادھ ہے میرا، تو میں نے کچھ کیا بھیا اس میں کچھ ہے نہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے سے 11 برس چھوٹا ہے، ہمارے یہاں بڑے بھائی کو بھی دادا کہتے ہیں. کیا تو جب وہ چھوٹا تھا تو ہم کو وہ دادا کہتا تھا، تو ہم بڑے بھائی کو بڑے دادا اور مجھے چھوٹے دادا، ہم اس کے چھوٹے بڑے دادا تھے. اب پھر اس کے بعد میں ہمارے بچے پیدا ہوا تو ان کی نقل کر کے دیوی دادا کہنے لگ گئے، تو ان کے باپ نہیں بن کے دادا بن گئے. ایک دفعہ تو سچ بولتا ہوں، ایک مہیلا نے میرے سے آ کے کہا کہ پنڈت جی، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا نا، یہ آپ کا پوتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ بیٹا. سچی گھٹنا ہے، پوتا پتر چھوٹا بھائی ہے نا. میں نے کہا نا بھائی، نہ پوتا ہے نہ بھائی بیٹا ہے، بھائی ہے میرا چھوٹا. اب وہ کہنے لگے، अब ये बच्चे कहने लग गए तो महाविद्यालय के विद्यार्थी कहने लग गए, और महाविद्यालय के विद्यार्थी कहने लग गए तो मुंह क्यों कहने लग गए, और सारी दुनिया कहने लगी, और जबरदस्ती के बन गए लेना नहीं देना नहीं। बोलो तो ये व्यवहार तो ऐसा है, देखो आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो जो ज्ञान अनुभव आत्मा को जान रहा है वो सविकल्प है, उसका स्वभाव सविकल्प है, समझे ना। और उसी समय जो अन्य पदार्थ जानने में आ रहे हैं वो ज्ञान भी सविकल्प है, लेकिन उस ज्ञान को गौण करके उसकी अपेक्षा इस आत्मा के ज्ञान को निर्विकल्प कहा। बोलो जो भी उसको उसके ज्ञान के गए बन जाए, वो ज्ञान वर्ण सेवसम रूमाला वर्ण कर्म का सेवसम होगा तो रूमाल बन जाएगा। वो तो भेद कहलाएगा, वो तो भेद करके कहलाएगा, भेद भेद जानना वो भेद कहलाएगा। सुनो अभी अभी अपन पढ़ते हैं, कहां तक आ गए थे भैया, मुझे समय का पता नहीं है, हो गया चलो बाकी कर लेंगे।